बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 27 जुलाई दिन शनिवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। असहिष्णुता के मुद्दे पर मशहूर फिल्मी हस्तियां आमने सामने क्यों? मॉब लिंचिंग के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को बुद्धिजीवियों के खुले खत के बाद प्रसून जोशी और कंगना रनौत ने मोदी के बचाव में कमर कसी। मॉब लिंचिंग जैसे अपराध के खिलाफ क्यों एकजुट नहीं है भारत? आज बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन कॉल करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद रहेंगी वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। मुंबई के करीब बाढ़ में फंसी एक ट्रेन में सवार 1200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बदलापुर और वांगड़िंग के बीच ट्रैक पर जलभराव के कारण मुंबई कोल्हापुर महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंस गई थी। ट्रेन 12-13 घंटे तक पानी में फंसी रही। इसके बाद सेना और बचाव टीमें लोगों की मदद करने के लिए पहुंची। बचाव कार्य के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया। यात्रियों को खाने के पैकेट और पीने का पानी बांटा गया। 9 गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने मदद के लिए घंटों इंतजार किया। एक महिला यात्री ने कहा,
जो मदद मिली वो अभी जो इधर ये लोग दे रहे हैं वही मदद मिली, बाकी कुछ नहीं।
नहीं, मदद तो पहुंच रही थी, लेकिन जैसे चालू हुआ सुबह, जैसे सुबह हो गई तो मदद पहुँच रही थी। हम लोग रुके हुए थे, बाकी पहले जा रहे थे।
हांगकांग में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। ये प्रदर्शनकारी उस गैंग के सदस्यों के घर के पास इकट्ठा हुए थे जिन पर पिछले हफ्ते लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने छाते की दीवार बना ली, जबकि कई दूसरों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने इस इलाके में प्रदर्शन करने पर बैन लगा रखा था, जिसे अनदेखा करते हुए हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग रविवार की घटना की जांच की मांग कर रहे हैं। कुछ का आरोप है कि पुलिस भी हमला करने वाली भीड़ के साथ मिली हुई थी, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को 12.5 करोड़ डॉलर देगा। ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात के कुछ दिन बाद की गई है। पिछले साल ही ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 2 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद को रोक दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में चरमपंथियों का समर्थन कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया। अमेरिका के अधिकारियों ने जोर देकर यह भी कहा है कि पिछले साल बंद की गई सैन्य मदद पर रोक जारी रहेगी। उनका कहना है कि F-16 के रखरखाव के लिए दी गई रकम से क्षेत्र के सैन्य संतुलन पर असर नहीं पड़ेगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मेयर ने अमेरिका से अपील की है कि वो बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर टैक्स लगाने के फ्रांस के फैसले के जवाब में आयात शुल्क ना बढ़ाए। ब्रूनो ने कहा कि दोनों मामलों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फ्रांस को चेतावनी दी थी। वित्त मंत्री ब्रूनो ले मेयर ने कहा कि जिन कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाया गया है वो सिर्फ अमेरिका की नहीं है। रूस में पुलिस ने 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल रूस के स्थानीय चुनावों में कई विपक्षी उम्मीदवारों को लड़ने नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी गई थी, इसके बावजूद हजारों लोग मॉस्को सिटी हॉल के नजदीक इकट्ठा हो गए। मॉस्को सिटी हॉल के बाहर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। प्रशासन ने करीब 30 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये लोग सितंबर के चुनाव में खड़े होने के लिए जरूरी वैध हस्ताक्षर नहीं जुटा पाए। सीरियाई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इदलिब प्रांत में सरकार और उसके सहयोगियों ने ताज़ा हवाई हमले किए हैं, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। रोमानिया के गृहमंत्री ने कहा है कि वहां के पुलिस प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप है कि वो एक किशोरी की हत्या रोकने में नाकाम रहे, जो लगातार इमरजेंसी फोन कॉल कर मदद मांग रही थी। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा के साप्ताहिक कार्यक्रम इंडिया बोल में, और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। श्रोताओं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन कॉल करिए। हमारे नंबर नोट कर लीजिए, 1811-7000 और 1811-7001। एक बार फिर नंबर सुनिए, 1811-7000 और 1811-7001। श्रोताओं, देश में भीड़ के हाथों मार देने और कथित असहिष्णुता की घटनाओं पर 49 कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर सख्त कदम उठाने की मांग की है। खत में मोदी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं और हिंदुत्ववादियों द्वारा कथित हिंसक घटनाओं पर नाराजगी जताई गई है। इसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत, गीतकार प्रसून जोशी, फिल्मकार मधुर भंडारकर समेत 62 हस्तियों ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया है। उन्होंने 49 बुद्धिजीवियों के खत को झूठी तस्वीर दिखाने वाला बताया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मॉब लिंचिंग और असहिष्णुता की घटनाओं पर दो राय क्यों है, क्यों एक सुर में भीड़ के हाथों पीटने की घटनाओं पर रोष प्रकट नहीं किया जाता है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी जी मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, आपका बीबीसी इंडिया बोल में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला सवाल यही है कि भीड़ के हाथों पीट पीट कर जो मार देने की घटनाएं हैं, जिन्हें अंग्रेजी में मॉब लिंचिंग भी कहा जाता है, और कल ही दिल्ली में चोरी के आरोप में एक 14 वर्षीय किशोर की कथित तौर पर हत्या कर दी गई है पीट पीट कर ही, असहिष्णुता, गौ हत्या, गौ तस्करी और डायन बताकर हत्या कर देने की जो घटनाएं हैं, उन पर दो राय क्यों हैं?
देखिए, इस फिनोमिना को अगर आप समझना चाहें तो उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें विक्टिम कौन है, कौन मारा जा रहा है। या तो वो एक नीची जाति का होगा, या मुसलमान होगा, या
आदिवासी भी है,
या आदिवासी होगा। तो हमारे देश में स्ट्रक्चरल एक हायरार्किकल सोसाइटी है हमारी, जिसमें कि इस तरह की वायलेंस हमेशा से रही है। और जब तक कि हमारे आप जैसे लोग सुरक्षित हैं, ऐसी चीज़ों में कोई ख़ास किसी को प्रॉब्लम रहता नहीं है। और अब जो है, आज का जैसा वातावरण है हमारे देश में, वो ये है कि हर एक चीज़ पर्सनलाइज है। ये जो भी इशू उठता है वो या तो प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में है या उनके ख़िलाफ़ है। अगर कोई गौ हत्या के ख़िलाफ़ बोल रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, और अगर कोई उनके गवर्नेंस को सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट। तो ये मी वर्सेस देम डिस्कोर्स हो चुका है। हर एक चीज़ जो है वो उस पोलराइज चश्मे से देखी जा रही है देश में। तो अच्छा, अब इसमें क्या है कि कुछ लोग जो कि इसमें आप ये समझिए कि हमारे देश में जो सिटीज़न का कॉन्सेप्ट है ना, कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वो एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, जिसका हिंदुस्तान में ज़्यादा रिस्पेक्ट पिछले 70-72 सालों में बना नहीं है। क्योंकि हु इज़ वीक इक्वल बिफोर लॉ हमारे यहाँ? कौन है जेलों में? 80% आप देखिए जो जनता जेल में है वो इस वजह से है कि या तो वो गरीब है या नीचे तबके की है, या वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो एक जो इक्वालिटी है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कौन पीटा जा रहा है ये आप देखिए उसको।
तो जैसा आपने कहा कि घटनाएं पहले भी होती रही हैं, तो अब ये वजह क्या है कि इस वक्त इस तरीके से दो दो पक्ष बन जाते हैं, दो दो राय हो जाती हैं, एक पक्ष में चला जाता है, एक विपक्ष में चला जाता है, तो क्या इसमें पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित समझा जाए इसे?
देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये एक इन मामलों में पिछले 5 साल में क्या हुआ है कि एक जो ख़ास तबका है, जो कि आप कह लीजिए कि मॉडर्न डेमोक्रेसी या सिटीज़नशिप का आइडिया या सिविलाइजेशनल जो एक एवोल्यूशन है उससे ताल्लुक़ रखता है, जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो आप कह लीजिए जिसको बीजेपी कहेगी लेफ़्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल या अर्बन नक्सल किस्म के ख़ास तौर के लोग, उनकी ज़ुबान जो है पिछले 4-5 सालों में, पहले राइटर्स ने अपने कई इस तरह के ख़त लिखे। और ये घटनाएं जैसे देखिए पिछले 4-5 साल में ज़्यादा प्रखर हो गई हैं, क्योंकि जो बीजेपी आरएसएस का की सरकार है, वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस नहीं है, उनके कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत रेडिकल हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, उनको एक तरह से शह मिल गई है। अब गौ हत्या में कोई खास स्टेप सरकार ने लिया नहीं है किसी के खिलाफ, तो लोगों को शह मिलती है इन सब चीज़ों में। रूल ऑफ लॉ है नहीं, तो उनको लगता है कि गाय के चलते आप किसी को मार दीजिए। लेकिन ये जो लोग चिट्ठी लिखते थे या अपना रोष प्रकट करते थे, वो एक खास तबका है, आर्टिस्ट का, इंटेलेक्चुअल का, राइटर्स का, एकेडमिक्स का, एक्टिविस्ट का, जर्नलिस्ट का। तो उससे बीजेपी थोड़ी सी परेशान रहती थी 3-4 सालों में, लेकिन अब बीजेपी ने अपने आर्टिस्ट को इकट्ठा कर लिया है। ये जो दूसरी तरफ से मत आया है, ये ऐसे लोग हैं जो कि मोदी जी के काफ़ी सपोर्टर्स रहे हैं, प्रसून जोशी हों या मधुर भंडारकर हों या कांग्रेस। तो बीजेपी पहले पार्टी की तरफ से आर्टिस्ट इंटेलेक्चुअल के खिलाफ स्टैंड लेती थी। अगर किसी ने चिट्ठी लिखी, पहले आप देखिए कुछ लोगों ने अपने अवार्ड वापसी का एक ट्रेंड हुआ था उस वक्त, बीजेपी को खुद को एक वक्तव्य जारी करना पड़ा, लेकिन अब उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर ली है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा है, उन्होंने जो ये अभी जो 49 बुद्धिजीवियों ने खत लिखा है, इसी को कहा है कि ये अवार्ड वापसी पार्ट 2 है। उन्होंने कह दिया कि ये वही अवार्ड वापसी का एक दूसरा चरण है, और उन्होंने कहा है कि उनकी देश में दलित और अल्पसंख्यक जो है हमारे देश में सुरक्षित, उनका कहना है। बढ़ते हैं आगे, चर्चा जारी रहेगी। हमारे स्टूडियो मैनेजर तिलकराज भाटिया इशारा कर रहे हैं कि हमें अपने पहले कॉलर को ले लेना चाहिए। जी हेलो, हम जान सकते हैं आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ।
जी अपना नाम बताएं।
जामनगर आमरण मेरा गाँव है, बीके परमार मेरा नाम है।
जी परमार जी, अपनी राय रखें इस विषय पर।
सर 49 मशहूर हस्तियों ने फेवर में
जी
बात की है,
जी
62 विरोध में बात की है 62 हस्तियों ने
जी,
उनको परिस्थिति की खबर नहीं है। 62 व्यक्ति को परिस्थिति की खबर नहीं है। 20 साल पहले ग्रेहाम स्टेंट का 2 बच्चों को ओडिशा में लिचिंग हुआ था, ये सिलसिला तब से शुरू हो रहा है। किसी का भी मर्डर ढेर के हाथों मारा जाना संविधान के खिलाफ है सर। संसद की गरिमा गिर रही है। बहस गरीबी, शिक्षा, पर्यावरण और जाति पाति मिटाने की जरूरत है। अने एक बार बराक ओबामा साहब ने चुनाव के दौरान अमेरिका में बोला था, डर लोकतंत्र को मारता है, डर बोलने से रोकता है, इसलिए लोकतंत्र के लिए बोलना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अच्छा रोल नहीं है इसमें, वो गलत बहस होती है इसकी। सर आंबेडकर साहब ने एक बार बोला था धर्म के बारे में, धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। धर्म के नाम पर ये खून खराबा बंद होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र बचाना चाहिए। मशहूर हस्तियों तो पब्लिसिटी की पड़ी है सिर्फ, ये गरीब आदमी की पता नहीं है गांव में क्या करता है, कैसी परिस्थिति में रहता है। वो तो सुरक्षित सीट में बैठे आनंद मना रहे है गरीब की, उसको परवाह नहीं है। सर इसमें हैरत अंगेज बात है कि 62 आदमियों ने जवाब दिया, जवाब सरकार को देना चाहिए।
जी बिल्कुल,
जवाब दे रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया परमार जी। अगले कॉलर को लेते हैं और जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी आप अपना नाम बताएं। जी आदाब, नाम बताएं अपना और कहां से बोल रहे हैं?
सर हम हाफिज कुतुबुद्दीन बोल रहे हैं, ग्राम मोहम्मद सुरकाजी कोशलीपुर जिला सुल्तानपुर।
जी हाफिज साहब बताएं, अपनी राय रखें।
सर जी ये सोचते हैं और देख रहे हैं देश में कोई मुसलमान जैसे मार्केट में गया गाय खरीदने तो दूध के लिए पालने के लिए काज दे, तो उससे सबकी नजर से देखा जाता है कि ये ले जाएगा क्या करेगा, काट के खा जाएगा। तो हमारे समझ नहीं आता कि अब मुसलमानों के अधिकार हाथ ऐसे देश में कैसे सुरक्षित रहेंगे, और जो पीट पीट के मार डाल रहे हैं देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये गवर्नमेंट से कि वंदे मातरम गाने बजाने से देश में एकता नहीं बनेगी, बल्कि हर देशवासी को सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा ये गाना होगा, सब देश में एकता और भाईचारा और आपस
जी। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। पूर्णिमा जी हमारे श्रोताओं की अलग अलग राय है, परमार जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है डर जो है वो लोकतंत्र को मारता है, वहीं हाफिज़ कहने लगे कि सिर्फ एक तबके के लोगों को भी, एक मुसलमानों को भी निशाना बनाया जाता है। अगर इन सब चीज़ों को किनारे रखें और देखें तो जो ख़त लिखे गए जो प्रधानमंत्री मोदी को कुछ लोग निशाना बनाते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं, तो क्या इस पूरी घटनाओं में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना कितना हद तक सही है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की भी बात होनी चाहिए।
नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो एक ख़ास तरह के व्यक्तित्व हैं, और ये जो पूरा पिछले 5-6 सालों में राजनीति हुई है ये सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर केंद्रित है। ये जो चुनाव है वो बीजेपी ने नहीं लड़ा, ये वोट मोदी के नाम पे मांगा गया वोट। तो एक ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि अब एक पोलराइज एटमॉस्फेयर है, कोई कुछ भी कह रहा है बात अंततः जाके मोदी जी के ऊपर टिक जाती है, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को एक एक इस तरह का मसीहा प्रोजेक्ट करते हैं कि जो कि हिंदुस्तान से में को क्लीन कर देंगे, हिंदुस्तान से करप्शन हटा देंगे, हिंदुस्तान एक नया बना देंगे। तो वो एक इस तरह का पर्सनालिटी है जो कि हर एक चीज़ में हावी हैं। तो बात, और ये आप ठीक कह रहे हैं कि सिस्टम्स की बात होनी चाहिए, बात लॉ एंड ऑर्डर की होनी चाहिए, बात एक आम आदमी का अधिकार की होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा और उनके सपोर्टर्स जो हैं, ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगी जो मीडिया में है, मीडिया का रोल इसमें आप देखिए, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि जिसका ज़्यादातर तबका मोदी जी को सपोर्ट करता है, और कोई भी चीज़ हो तो वो उन पे जाके केंद्रित कर देता है, और दूसरा ये जो आपका अल्टरनेटिव मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो एक तरह का माहौल बनाया गया है जिसमें कि जो अच्छा हो रहा है वो मोदी जी कर रहे हैं, तो जो बुरा होगा उसके लिए भी मोदी जी को ठहराया जाएगा जिम्मेदार। एक माहौल इस तरह का है देश में।
तो अगर मैम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झारखंड में तबरेज अंसारी की जो हत्या हुई, जो पीट पीट कर मार दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई तबरेज अंसारी की, तो संसद में तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी, तो इस लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयास भी किए हैं।
देखिए, बात बोलने की नहीं होती है, बात आप किस तरह की मैसेजिंग आप देते हैं। मोदी जी बहुत ही मजे हुए राजनीतिक वो हैं, व्यक्तित्व हैं, उनको पता है क्या कहने से क्या नहीं कहने से। अब अगर आप साध्वी प्रज्ञा जैसे व्यक्तित्व को आप टिकट देते हैं, वो मालेगांव बमला, अब वो खुलेआम नाथुराम गोडसे को सपोर्ट करती हैं, आप देखिए संसद में जिस तरह का माहौल है। एक ये जो हिंदू मुसलमान टेंशन है ये हमेशा बीजेपी को मदद करती है पॉलिटिकली, और ये इनका मेन प्लैंक है। इसमें कोई आप ये जो सारी डेवलपमेंट की बातचीत है इसको आप देख लीजिए एक तरीके से, लेकिन बीजेपी का जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है मोदी जी का या बीजेपी का, उसका आधार सिर्फ ये है कि सोसाइटी में एक हिंदू मुसलमान टेंशन हमेशा रहे। जिस तरह से मुसलमान MPs को हैकल किया जाता है आजकल पार्लियामेंट में, ये बहुत ही दुख की बात है लेकिन हो रहा है ऐसा। और आप देखिए ये जितनी भी मॉब वायलेंस है इसमें ज़्यादातर टारगेट, अब गौ हत्या, अब ये इसका सबसे बड़े विक्टिम कौन है
जी,
आप देख लीजिए, या तो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर नीचे तबके के लोग हैं, कोई अपर कास्ट हिंदू इसमें टारगेट नहीं हो रहा है
जी। अभी अभी रेडियो सेट खोलने वाले श्रोताओं को हम बता दें कि आज BBC इंडिया बोल में हमारी चर्चा हो रही है मॉब लिंचिंग जैसे अपराध के खिलाफ क्यों एकजुट नहीं हो रहा है भारत। BBC इंडिया बोल में फ़ोन कॉल करने के लिए 1811-7000 और 1811-7001 पर कॉल करें। अब जान लेते हैं हमारे साथ अगला कॉलर कौन है जी। हेलो, अपना नाम बताएं हमें।
हाँ, डॉक्टर आर के गुप्ता घाटमपुर से बोल रहे हैं
जी। आर के गुप्ता जी बताएं।
मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में पॉलिटिक्स में किसी जाति में हमारे समस्या गंदे नहीं होते हैं। हाँ, हर जगह गंदे हैं, हिंदू में भी कुछ लोग गलत होते हैं और मुसलमानों में। जहाँ तक लोकतंत्र की बात है तो अभी एक मैडम कह रही थी कि उसमें मोदी जी, ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये, हेलो
जी जी बताएं,
इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों के विचार अच्छे कम होते हैं कुछ लोगों के, इसे सबको नहीं कहा जाएगा। आज संसद में भी देखा जाता है, माननीय हमारे आजम खान साहब का विचार आया, हालांकि उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कहा लेकिन सबको गलत नहीं कहना चाहिए।
लेकिन गुप्ता जी, चर्चा इस बात पे भी है कि जो पीट पीट कर मार देने की घटनाएं होती हैं, उस पर एक राय से विरोध क्यों नहीं होता, उस पर एक राय से एक आम सहमति क्यों नहीं बनती है कि इन जैसी घटनाओं को रोका जाए। अभी दो दिन पहले ही दिल्ली में एक घटना हो चुकी है, कुछ दिन पहले झारखंड में हो चुकी है, तो उस पर विरोध क्यों नहीं होता?
विरोध होता है, लेकिन कहीं कहीं देखिए कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोगों के मन में सामान्य भाव है कि हिंदू भी एक है मुसलमान, लेकिन हर जगह गंदे लोग हैं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, और हिंदुओं में भी कुछ लोग अराजकता बनते हैं, लेकिन काफी उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। मुसलमानों में भी कुछ लोग हैं, सभी लोग गलत नहीं, हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है, लेकिन कुछ लोग गंदे होकर के एक समाज को, मैं समझता हूँ, बदनाम करते हैं।
जी,
लोकतंत्र के लिए
बिल्कुल
अच्छा नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद आरके गुप्ता जी आपकी बात रखने के लिए। हम देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी, हमें अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं ये भी बताएं।
हेलो
जी, हमें अपना नाम बताएं।
नमस्कार सर, मैं अमन सिंह बोल रहा हूँ, बिहार गोपालगंज जिला।
जी अमन सिंह बताएं।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लेटर सेलिब्रिटी लोग लिखे हैं,
जी
ये पब्लिसिटी के लिए लिखे हैं, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं मॉब लिंचिंग के, और इस सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग का उदाहरण है 1991-92 कश्मीरी पंडितों का। उस समय ही लोगों का कुछ ऐसा लेटर वगैरह नहीं आया था।
जी, तो दोनों तबकों ने लिखा है, एक समर्थन में भी लिखा है मोदी के, और
सर वही कह रहे हैं कि एक समर्थन में आते हैं, बिना समर्थन का। अगर ये अच्छा सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर जिस सरकार से आते हैं, मतलब जिस स्टेट से आते हैं, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तभी वो वहां से कुछ लेटर निकल रहा है।
जी।
और दूसरी बात ये है कि अगर हमको प्रधानमंत्री जी से कोई शिकायत है, तो मैं लेटर लिखूंगा उनको और कहूंगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं अपने क्षेत्र के बारे में ऐसे हूं, ये बताऊंगा, ऐसे अगर इसमें ऐसे चेंज हो सकता है तो ये अच्छा बात है। अब डायरेक्ट आप लेटर लिख दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली दिख रहा है कि आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं।
जी अमन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हम जान लेते हैं अगले कॉलर के बारे में। जी
नमस्कार सर, मैं आशुतोष सिंह चंदौली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
जी आशुतोष भाई बताएं।
सर होम लिंचिंग पर मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे सरकार की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है कानून व्यवस्था में, उसकी वजह से ऐसी घटनाएं घट रही है। क्योंकि इसमें जो मतलब जहाँ तक पत्रकार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी बोल रहे हैं कि इसमें माइनॉरिटीज और जो मुस्लिम है उनके ऊपर ज्यादा घटनाएं घट रही हैं, और जो सरकार है वो एक मतलब किसी एक व्यक्ति के मोनोपोली पर इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि इसमें देखा गया, कई बार भी हम भी देख रहे हैं कि सर मोदी सरकार बोली जाती है, जबकि मोदी प्रशासन बोलना चाहिए। मीडिया में भी इसी तरह लिखा जा रहा है। तो
जी जी अपनी जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। पूर्णिमा जी, पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र सरकार और कुछ राज्यों को निर्देश दिए थे कि वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए, पीड़ितों को न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात जैसे 10 राज्य शामिल थे, लेकिन अभी तक सिर्फ मणिपुर में ही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर कानून बना है, और मध्य प्रदेश में गौरक्षकों की जो कथित हिंसा है उसके खिलाफ कानून बना जरूर है, लेकिन वो अभी तक पारित नहीं हो पाया, लागू नहीं हुआ है। तो क्या कानून बना देने से इन घटनाओं पर अंकुश लग जाएगी, या जो है लोगों की राय नहीं बटेगी सिर्फ कानून बना देने से?
देखिए कानून इसमें दो राय हैं। एक तो ये कि कानून पहले बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, कोई नए कानून की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई मॉब टारगेट कर रहा है तो उसके लिए एग्जिस्टिंग लॉज काफ़ी हैं। दूसरा मत यह है, जो कि सरकार खुद कहती है कि जो सख्त कानून है वो ज़रूरी हैं। अब जैसे इसमें देखिए आप सरकार की प्रायोरिटी क्या है वो देखिए। अभी जो संसद चल रही है उसमें 15-1 कानून पास हुए हैं, उसमें जो एंटी टेरर कानून हैं जिसमें काफ़ी बहस संसद में भी हुई है, वो इसको लेके कि ये जो कानून है जो कि एक्सेप्शनल कानून है, पहले पोटा था, उससे पहले टाडा था, उसके बाद UAPA आया, और इन तीनों कानूनों का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। टाडा को रिपील करना पड़ा, पोटा को रिपील करने के लिए अडवाणी जी ने खुद अपने लिए अपनी एक रिव्यू कमेटी बनाई थी, उसको रिपील किया, उसके बाद UAPA आया, उसकी भी बहुत वाइड स्प्रेड मिसयूज़ है। लेकिन उसको सरकार ने इसलिए जायज़ ठहराया और अमित शाह ने कहा कि एक सख्त लॉ की ज़रूरत होती है। तो एक तरह से ये लॉज आ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा ट्रिपल तलाक, मतलब सरकार की आप प्रायोरिटीज़ देखिए कि सरकार ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को खारिज कर दिया। जो चीज़ खारिज हो चुकी है उसके खिलाफ सरकार लॉ लाती है। तो तलाक जैसा जो सिविल ऑफेंस है उसको आप क्रिमिनलाइज कर दीजिए, लेकिन मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसके ऊपर आप एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये नहीं है कि नया कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सरकार की आप प्राथमिकताएं क्या हैं उसको देखिए। जो मॉब लिंचिंग है वो हो कैसे सकती है अगर प्रशासन नहीं अलाउ करता, अगर पुलिस नहीं अलाउ करती, अगर लॉ एंड ऑर्डर इस देश में है तो कैसे ये गौरक्ष है? कौन लोग हैं ये? क्या ये किसी खास पार्टी से हैं? आखिरकार पुलिस को अपने एरिया में कौन इस तरह के तत्व हैं सब मालूम होता है। तो इन लोगों को कैसे अलाउ किया जा रहा है कि ये और एक पूरा देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश या हरियाणा वगैरह में आप जाएं, किसान ने गाय रखना बंद कर दिया है। हिंदुस्तान में गायों की जो अच्छी प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं क्योंकि लोगों को डर लगने लगा है अब गाय रखते हुए।
मैम, आपने जैसे अभी आपने कहा कि क्या कहते हैं, कानून बहुत सारे हैं और उनसे ही बहुत कुछ हो सकता था। क्या अगर प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक तौर पर अपील करते, जिस तरीके से रैलियों में वो बोलते हैं, ओजस्वी भाषण देते हैं, अगर इसी मॉब लिंचिंग को लेकर अगर एक राय वो बनाते तो क्या तस्वीर कुछ दूसरी हो सकती थी?
जी ज़रूर। जिस तरह का मैसेज उन्होंने स्वच्छ भारत पे दिया है, जिस तरह का मैसेज उन्होंने करप्शन के ऊपर दिया है, एक ये इतना बड़ा सोशल इविल है। और सोशल लेवल क्या है, तो मतलब क्रिमिनल घटनाएं एक खास तौर के तबके के साथ हो रही है, आपको ज़रूर कहना चाहिए। खास जबकि लोगों को उनके ऊपर भरोसा है, उनकी इतनी इज्जत है, उनको दूसरा इतना बड़ा मैंडेट मिला है, प्रधानमंत्री चाहें तो क्या नहीं हो सकता है देश में, और क्यों नहीं हो रहा है? और देखिए, ऐसा कहना कि अपर्णा सेन या अनुराग कश्यप की तरह के लोग जिनको मुझे नहीं लगता कि ऐसी पब्लिसिटी की कोई ख़ास ज़रूरत है। अगर आपके देश के आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स, उनको किसी बात का कोई दर्द है और वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप उनका ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, तो उनका मजाक उड़ाना मुझे नहीं लगता और उनके खिलाफ एक और फौज खड़ा कर देना, ये तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है।
जी, और हमारा वक्त अभी समाप्ति की ओर चल पड़ा है, लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक सवाल अंतिम पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि आप उसका अच्छे मतलब थोड़ा संक्षिप्त जवाब दें कि जो ये घटनाएं हैं जिस तरीके से पूर्णिमा जी देख रही हैं और इन पर एक राय नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम आप क्या देखती हैं? क्या लगता है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो क्या ये जो सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बात करके कहते हैं हमारी सबकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सब अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर एक राय नहीं है, तो इसके आप देश में दूरगामी परिणाम क्या देखती हैं?
बहुत खतरनाक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो एक मतलब ये जो एक एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेंड हमारे देश में चल गया है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो एंटी नेशनल है, ये बहुत ही ख़राब और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और ये जस्टिफाई कर रही है सरकार एक तरह से कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी खामी को आप उजागर कीजिए तो आप एक एंटी नेशनल हैं या एंटी मोदी हैं या एंटी बीजेपी हैं। अगर कोई बात कह रहा है उसका आप सार न लीजिए, उनको एक तरह से ब्रांड कर दीजिए, ये मुझे लगता है बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है।
और एक राय कैसे बन सकती है? मतलब
देखिए, किसी भी चीज़ में एक राय तो कभी हो नहीं सकती, लेकिन मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में अगर एक राय नहीं है तो आप देखिए ना कि ये किसका कसूर है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है?
सत्ताधारी दल की है।
जो लोग पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं उनकी है।
जी, पूर्णिमा जोशी जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही धन्यवाद हमारे श्रोताओं को भी, जिनको शामिल नहीं कर पाए उनसे हम बहुत माफ़ी चाहते हैं। बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को दे अनुमति। नमस्कार।